लफ्ज़ नसरा का अगर आप ग्रामर में मानी देखें तो बड़ा खूबसूरत है, जिससे आपको बात इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। और वो क्या है, नसर अरबी ज़बान में कहते हैं किसी को गंदम देना। आप देखिए कि यहाँ नुसरत और नसर मदद के लफ्ज़ के अंदर गंदम की बात करके अल्लाह सुबहाना तआला ने एक बहुत ही खूबसूरत सोच हमें दी। और वो क्या है कि अमूमन दुनिया में लोग खाने पीने की फ़िक्र रखते हैं ना, कि वो लोग जो दुनिया में अमूमन अपने रिज़्क रोटी के लिए परेशान रहते हैं, अगर चाहते हैं ना कि हकीकत में अल्लाह सुबहाना तआला उनको दूसरी चीज़ों से बेनियाज करके उनके सारे काम जो हैं वो खुद ही कर ले करवा ले, तो उनको अल्लाह के रास्तों में लग जाना चाहिए, अल्लाह के कामों में लग जाना चाहिए। आज भी देहातों में जो लोग रहते हैं उनको अंदाज़ा है कि गंदम करेंसी का बदल होती है। कहते हैं जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने, गंदम के बदले में कई काम करवा लिए जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ मुसलमान मुल्कों को एक और ख़बर दी कि तुम अपने एसेट्स को इस तरह से ना दूसरों के हाथों में बेचो कि शायद तुम्हारे अपने मुल्कों की चीज़ें दूसरों मुल्कों में तो मिल जाएं और तुम्हारे अपने मुल्कों वाले उससे तरस जाएं। फिर आप देखिए कि यहाँ जो अल्लाह ताला की मदद की बात हुई है, तो अमूमन मदद का तसव्वुर आते ही हमारे जहनों में आता है कि कोई बूढ़ा है, कोई बड़ा है, ख़ुद वो काम नहीं कर सकता तो उसकी मदद करें, जबकि अल्लाह के लिए ऐसा नहीं। ये जुमला मैंने शऊर से बोला कि कहीं कोई ये बात सुनते वक्त ये ना सोच ले कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद का मुहताज है। ना तो अल्लाह ताला बूढ़ा होता है कि उसको हमारी फ़िज़िकल हेल्प की ज़रूरत है, और ना अल्लाह ताला ऐसा है कि वो हमारी मदद के बग़ैर काम नहीं कर सकता। बल्कि ऐसे कह लें कि अल्लाह ताला अपने दीन की मदद करने की ऑनर कुछ लोगों को ऑफ़र करता है। जो बंदा अल्लाह के दीन का काम इस सोच के साथ करता है ना कि मुझे एक ऑनर मिल रही है और अल्लाह करे कि ये मुझसे छीने ना, ऐसा शख्स जब सच्चे दिल से अल्लाह के दीन का कोई काम करता है ना, तो उसके दिल के अंदर बड़े अंदेशे आते हैं। पहला अंदेशा तो उसके दिल में अपने गुनाहों का आता है कि अल्लाह मेरा कोई गुना ऐसा ना हो कि जो मुझे इस जॉब से हटा दे। अब देखिए कि दुनिया के काम जब मिलते हैं, जॉब्स होती हैं, तो लोग ले ऑफ़ का बहुत ख़तरा रखते हैं। अमूमन ले ऑफ़ जो किए जाते हैं लोग आम हालात में अपनी नाहली की वजह से किए जाते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा बंदा आ जाए। लिखें पॉइंट्स, अमूमन लोग ले ऑफ़ क्यों होते हैं, यानी जॉब से उनको क्यों निकाला जाता है। पहली बात है कि कारकर्दगी सही नहीं होती, अभी उस दर्जे पे नहीं पहुँचे। दूसरी वजह किसी भी जॉब के हटने की ये होती है कि कोई ऐसी सरीख किस्म की गलती इंसान से हो जाती है जिसको वो कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती और निकाल देती है। तीसरी एक वजह क्या होती है कि लोग बहुत ज़्यादा थे, काम थोड़ा था, इसलिए कुछ को कम किया। इसी तरह एक और वजह ये होती है कि कंपनी नफ़े में नहीं चल रही, तो वो उनकी पेस या उनके जो खराजात है उसको बर्दाश्त नहीं करती, तो फिर वो सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन पीछे हैं कौन नहीं। फिर एक और वजह क्या होती है कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं ना, तजुर्बाकार, उनको हमेशा ही रखा जाता है और नए लोगों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि बहरहाल नए बंदे को ट्रेन करना जो है ये मुश्किल होता है। अब इसी किस्म की और भी बातें सोचते हुए आप ले आइए अपनी इन बातों को अल्लाह के रास्ते के कामों पे। एक सच्चा मोमिन हर लम्हे ले ऑफ होने का ख़तरा रखता है, उसको डर ये होता है कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिसकी वजह से अल्लाह मुझसे तौफीक छीन ले, कहीं और इतने ज़्यादा लोग ना आ जाएं कि मेरी जगह ही ना रहे। अब वो नए आने वालों को रोकता नहीं है, लेग पुलिंग नहीं करता, बल्कि वो अपनी सलाहियतों को बढ़ाता रहता है। हर लम्हे वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है, ना शुक्रापन नहीं करता, कभी भी उस काम के बारे में कोई नेगेटिव जुमला नहीं बोलता कहीं भी कि कहीं वो अल्लाह को बुरा लग गया और अल्लाह मुझे उस काम से हटा दे। क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग हमदर्दियाँ भी देखते हैं ना, कौन सा वर्कर है तो अच्छा लेकिन इसकी हमदर्दियाँ हमारी कंपनी से नहीं है, चलो इसको निकाल देते हैं। फलां है भी अच्छा, हमदर्दियाँ भी हैं, मुखलिस भी है, तजुर्बेकार है, कौन निकालेगा उसको। आप देखिए कि एक वक्त था कि अबू बकर सिद्दीक तनहा इस्लाम में दाखिल हुए, क्या जब बहुत सारे लोग आ गए तो उनको निकाला किसी ने? कभी कोई ऐसा सोच भी सकता है कि अब अबू बकर सिद्दीक की ज़रूरत नहीं रही इस्लाम को? नहीं, अल्लाह के नबी के बाद आपके बाद जो दीन का काम था वो किसके कंधों पे पड़ा? नए आने वाले लोगों पे, जो फतह मक्का के मौके पे मुसलमान हुए, जो हज्जतुल विदा में मुसलमान हुए, जो तबूक से वापसी पे मुसलमान हुए, नहीं अबू बकर सिद्दीक। क्यों? ओल्ड इज़ गोल्ड, बुनियादों पे इमारत खड़ी होती हैं। तो लिहाजा जिस बंदे को अल्लाह के दीन के काम की सआदत मिल जाए वो खुशी करे, खुशी मनाए। दुनिया के कामों में जब हम थकते हैं ना तो हमारा मूड ऑफ होता है। कभी सोचें आप शॉपिंग करने गए हों, मनपसंद चीज़ें खरीद रहे हैं, बाजार से वापसी पे क्या हाल होता है? वो बैग उठाने भी बोझा लगते हैं, सर में भी दर्द है, भूख भी है, प्यास भी है, थकते हैं। लेकिन जो सच्चे दिल से दीन का काम करता है वो अपनी कैफियत को चेक करे। अब दीन के कामों में जितना थकते हैं ना, जिस्म थके ये पता कब चलता है? जब आप रात बिस्तर पे आते हैं, उस काम के दौरान ना थकन महसूस होती है, ना भूख, ना प्यास, ना सर दर्द, और आपका मूड भी खुशगवार होता है। ये खौफ होता है कि घर जाते ही शामत ना आ जाए। अंदेशे तो हो सकते हैं लेकिन आपका मूड कभी ख़राब नहीं होता। और जो मुसलमान कुर्बानियों की एक ख़ास हद को पहुंच चुके होते हैं ना, फिर उनको अल्लाह की ये मदद मिलती है। आज हम तकरीबन 1.5 बिलियन मुसलमान हैं, क्यों नहीं मिल रही अल्लाह की मदद? या मिलती भी दिखती क्यों नहीं है? मिली हुई है तभी थमे हुए हैं, वरना तो शायद दुनिया में अपने गुनाहों की वजह से आप कायम भी ना रह चुके होते। अल्लाह ताला ने हमें आजमाया, दावे करते हैं, दुआएं करते हैं, मजलूम भी हैं आज देखा जाए। मदद क्यों नहीं? इसलिए कि अभी उस नहज पे नहीं पहुंचे, अभी हम खुद अल्लाह ताला की अबूदियत के रंग में नहीं बंधे हुए, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर हमारी अपनी जिंदगी आई नहीं। हम दुश्मनों से कैसे लड़े, अभी उनके साथ हमारे मरासम ही बहुत गहरे हैं, अभी हमने पूरी तरह हिजरत ही नहीं की। और अल्लाह ताला कभी भी अधूरे लोगों को पूरा काम नहीं देता। अब देखिए कि आपके पास कोई बड़ी कीमती चीज़ हो, किसके पास रखवाएंगे? नंबर एक, जो उसकी हिफाजत करे, और नंबर दो, जो उसकी कदर करे। आपका बड़ा प्यारा सूट हो जब आप नहीं पहनते, किसको देंगे ऐसे ही उठा के? नहीं, आप कहेंगे उसको देती हूँ, वो इसकी बड़ी कदर करेगी। चलो मैंने जो मेहनत की थी, बनाया था, पहना, अब कोई और इससे फ़ायदा उठा ले। और आपको पता चले आपने अपना कीमती जोड़ा किसी को दिया और वो रात को पहन के सो गई, अगले दिन उन्होंने मशीन में डाला और कहा ये तो बेकार कपड़ा था, तो नहीं देंगे ना? अल्लाह का दीन सबसे कीमती चीज़ है इस दुनिया में। अल्लाह कदरदानों को देता है, अल्लाह संभालने वालों को देता है, केयरलेस लोगों को अल्लाह ताला दीन के काम नहीं देता। देता भी है तो उनसे वापस ले लेगा अगर ज़रा सी भी उन्होंने केयरलेस की। सहाबा कराम को 13 साल में अखलाकी जिहाद सिखाया गया था, इस बिरू व सा बिरू व रबितु के मराहल से गुजर चुके, फिर कहा उजीना लिल्लज़ीन, अब बदले ले सकते हो। तो लिहाजा सारी बात का खुलासा क्या है कि जब बंदा अपनी ज़ात पर दीन को मुकद्दम जाने, ये जुमला लिख ले, अपनी ज़ात पर दीन को मुकद्दम जानना है, फिर मिलेगी अल्लाह की मदद। अपनी बीमारी, इसमें ज़ात में बीमारी, सेहत, घर, शादी, ब्याह, प्लानिंग, प्रोग्राम्स, आना जाना सब आता है। जब भी कोई फैसला करे उससे पहले दीन को देखे। बच्चों के स्कूल खुले हैं तो हम शॉपिंग करते हैं, तब हम बाज़ारों में जाते हैं, दावतों में जाते हैं, नहीं जाते जब छुट्टियां होती हैं ना। वीकेंड पे सारे काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने बच्चों की तालीम को मुकद्दम रखा हुआ है। इसी तरह हम कोई प्लान करें, सबसे पहले सोचें कि मेरे दीन का काम कैसे होगा, फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अल्लाह की मदद आएगी। फिर जो सिले की उम्मीद अल्लाह की बजाय लोगों से रखेगा ना, वो कभी नहीं चल सकेगा। अल्लाह ताला दुनिया में भी ऐसे बंदे को पलटा देता है जो एक से ज़्यादा दूसरों की तरफ नज़रें रखने लगेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस रास्ते में तन मन धन लगाने की तौफीक दे, और ये साथ जज्बात दे कि जो लगाओ थोड़ा लगाया है, जितना लगाया थोड़ा लगाया है। हम में से हर बंदा अगर ये सोच ले कि सिर्फ मेरे कंधों पे है दीन का काम पूरी दुनिया में, फिर देखें जो ताकत आएगी, जो एनर्जी आएगी। और अगर ये सोच लें कि जी मैंने ठेका लिया हुआ, अब हर बात में मेरे ही नाम, अब ये भी मैं करूँ तो वो भी मैं करूँ, तो फिर वो खुशकिस्मत बन रहा था कि जिसके हाथ में बैंक की चाबियां आ रही थी उसने ये सोच के रिजेक्ट कर दी कि क्या मुश्किल है, अब सब कुछ मैं करूं। यकीन करें एक दफ़ा बंदा अपना ट्रस्ट बना लेता है ना, तो आप उसको सारे चीज़ों के मालिक कर देते हैं ना। बाज़ दफ़ा कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं पूरे लाखों के बिजनेस उनके हाथों में होते हैं, ओनर्स को तो पता ही नहीं होता करके आ रहे हैं, उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता। इसी तरह अल्लाह ताला सच्चे मोमिन को एक वक्त आता है कि दीन की चाबियां पकड़ा देता है कि तुम करो जो तुम चाहो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो करोगे वो हकीकत में वही होगा जो मैंने चाहा था। अल्लाह ताला हम सबको اس طرح سے دین کو لینے والا بنا دے کہ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو لانے والا ہو. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بات کو پچھلی قوموں کے ناطے سے بیان کیا, وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کیا تعجب کی بات ہے, اس میں کیا غم کی بات ہے, کیوں فکر کرتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ, آپ سے پہلے جھٹلائے گئے قوم نوح, عاد اور ثمود, یعنی ان قوموں کے پاس بھی جب نبی آئے تھے تو انہوں نے جھٹلا دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو بچا لیا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ قوم ابراہیم و قوم لوط, اور قوم ابراہیم نے بھی جھٹلایا, قوم لوط نے بھی جھٹلایا. تو ان کے جھٹلائے جانے کے تذکرے ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے نبی آئے اور ان کو جھٹلایا گیا, تفصیلات کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو کتنی تسلی مل رہی ہے, کتنے خوبصورت طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس راستے میں اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو فکر نہ کریں. یہ تو سنت ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر آپ تک کے دور کے مختلف لوگوں میں جو حالات آئے وہی آپ کے اوپر آ رہے ہیں. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى, اور مدین کے رہنے والوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور جھٹلائے گئے موسیٰ بھی. پھر ہوا کیا, فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, پھر میں نے مہلت دی کافروں کو. ذرا نوٹ کیجئے گا, پیچھے سارے جمع کے سیگے تھے, بڑی بڑی قوموں کا تذکرہ تھا, اور آگے بات آ گئی اَمْلَيْتُ, واحد متکلم کا سیگا, میں نے مہلت دی. یہ نہیں کہا کہ فَأَمْلَيْنَا, ہم نے مہلت دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قوموں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ انفرادی نوعیت کا ہوتا ہے. ہر بندہ اللہ کی نظروں میں کون کیا کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا, اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے. ہر بندہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے, پھر اللہ کی نگاہوں کا اپنے اوپر لگا ہوا محسوس کرے. یقین کریں کہ ہماری ساری قابلیتیں ہمارے ہاتھ میں دھری رہیں گی اگر اللہ کی مدد نہ آئے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کا دی کام نہیں کریں گے, گھر سے جائیں گے, گھر بنائیں گے, بچوں کی شادیاں کریں گے. کیا کر لیں گے آپ شادی؟ ہم میں سے کسی کی طاقت ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح جگہ شادیاں کر سکے؟ کیا کاروبار ہم کریں گے؟ کتنا کو دولت کمائیں گے؟ آپ کہتے ہیں ہمیں کام کرنے, ہمیں گھر سے جانے ہیں. کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں. جب اللہ کے راستوں میں انسان آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح اس کے کام سنوار لیتا ہے کہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہے, اس کے قدم بن جاتا ہے, اور ایسا شخص واقعی پھر دنیا کے کاموں میں بھی لوگوں کی نظروں میں بہت قابل رشک ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے کام ہوتے کہاں سے ہیں, کون کرتا ہے آپ کے کام, کس طریقے سے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے تذکرے کے بعد فرمایا, فام لئی تو, پھر میں نے مہلت دی. شاید ہماری بھی مہلت کے دن ہو. آج امت مسلمہ کو بھی لگ نہیں رہا کہ مہلت ملی ہوئی ہے. پھر ہوا کیا, ثم اخذتهم, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. اللہ اکبر, یعنی مہلت کا بھی جب کوئی قوم فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ پھر یوں پکڑتا ہے, فکیف کان نکیر, پھر دیکھو کیسی تھی میری پکڑ, کیسے خوفناک طریقے سے میں نے ان کو پکڑا, کیسی نکر سے, بالکل انجان قسم کی پکڑ ہوئی ان کی. یعنی ایسی جگہ سے پھر میں نے ان کو پکڑا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور حقیقت ہے کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ حالات اچانک بگڑ گئے, اچانک زلزلہ آ گیا, اچانک سیلاب آ گئے. نہیں, وہ مہلت کے ختم ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی مہلتوں کا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. اور ایسے لوگ اصل میں اپنے آپ کو خود اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مجرم ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے حالات سے نصیحت نہ پکڑیں. کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرتا ہے کہ جب کوئی قوم ضلالت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت بھی نہ لے, ہدایت کی بجائے گزشتہ قوموں کی تباہی کے قصوں کو مزے لے لے کے پڑھے. میوزیمز کے اندر میوزک کے ساتھ پچھلی قوموں کے شرک اور ان کے بدعات اور ان کی باقی چیزوں کو جب لوگ لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ڈال دیا. اب ایسی قوموں کا حال کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے اوپر توجہ دلانے کے لیے فرماتے ہیں, فَكَأَيِّن قَرْيَةٍ, پس دیکھو کتنی ہی تو بستیاں ہیں, اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ, ہم نے ان کو تہ والا کر ڈالا جبکہ وہ ظالم تھیں, فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں. عروش عرش کی جمع, یعنی چھتیں زمین پہ آئی ہوئی ہیں اور زمین جو ہے وہ زمین کے اندر جا چکی ہے. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ, اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار ہو چکے. بیر کنویں کو کہتے ہیں, اردو میں بھی ہم جانتے ہیں بیر علی کے نام پہ معروف کنواں موجود ہے. और मुअत्तला का लफ्ज़ ऐन तोय लाम से है। उर्दू में हम कहते हैं फलां को मुअत्तल कर दिया गया। चलें, तातीलात का लफ्ज़ तो सुना ही होगा ना, स्कूल में तातीलात चल रही हैं, तो मुअत्तल कहते हैं बेकार और बेमसरफ़ को, जिसका कोई मसरफ ना हो। वो कुआं जहाँ से लोगों ने पानी लेना छोड़ दिया हो, उसको मुअत्तल कहते हैं। और कसर कहते हैं महल को, और कसरे फलां के नाम से उर्दू में भी ये लफ्ज़ आता है। और मशीद शैद से है, शीन या दाल इसका रूट है। वो इमारत जो चूने से चुनी गई हो और चूने से पलस्तर किया गया हो, मुराद है मजबूत और शानदार। कहीं ये लफ्ज़ पीछे पड़ा है अपने, थोड़े से फ़र्क से सूरत निसा में पड़ा था। अइनमा तकूनो युद्रिककुमुल मौत वलो कुन्तुम फी बुरूजे मुशय्यदा। याद आया? दुआ किया करें कि जब आप पढ़ें तो आपके भी जहन में पिछली आयतें आ जाएं। और ये दुआओं से होगा, बार बार पढ़ने से नहीं, ये दुआओं से होता है। अल्लाह ताला फहम खोलता है कि एकदम वो खिड़की खुल जाती है आपकी दिमाग की जहाँ वो लफ्ज़ पढ़ा हुआ है। तो वहाँ वो लफ्ज़ मुशय्यदा था, यहाँ मशीद है। मजबूत, कितनी बड़े बड़े महल थे, आज कहाँ हैं? किसी को दिखते हैं? कहाँ गए नमरूद के महल, कहाँ गए फिरौन के महल? आज कुछ भी तो यहाँ दुनिया में नज़र नहीं आता, क्योंकि ऐसी कौमों ने अल्लाह की उस नेमत का हक अदा नहीं किया। फिर फरमाया फलम यसीरु फिल अर्दी, क्या फिर उन्होंने सैर नहीं की ज़मीन में, फिरे नहीं सारा यसीरु से। फतकून लहुम कुलूबुन याकिलून बिहा, इनके दिल ऐसे हो जाते जिनसे वो हक को समझ सकते, यानी इन खंडरात को देखते, और इसके बाद इनके दिल हक बात को देखकर खुल जाते। औ आज़ान यस्माऊ नबीहा, और इनके कान ऐसे हो जाते कि जिनसे ये नसीहत को सुन सकते। और इतना सुनने और देखने की ज़रूरत क्यों है? इसलिए, बड़ी खूबसूरत आयत है और डर भी बहुत लगता है इसको पढ़ते पढ़ाते हुए। फरमाया फ़इन्नहा ला तअमल अबसार, हकीकत तो ये है कि आंखें अंधी नहीं होती। वलाकिन तअमल कुलूबुल लतीफ़ सुदूर, बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। आंखें नहीं अंधी होती, आंखों का अंधा जो होता है ना, वो फिर भी टटोल टटोल के रास्ता पहचान ही लेता है। लेकिन जिसका दिल अंधा हो जाता है ना, जो कौम दूसरों की हालत से नसीहत नहीं लेती, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से फ़ायदा नहीं उठाती, जो ज़मीन के उन टुकड़ों को जो अल्लाह के नाम पे लिए होते हैं सही तरह इस्तेमाल नहीं करती, तो वो इस बुरे अंजाम से दोचार होती हैं। उनके हालात जो हैं वो ख़राब होके रहते हैं। आप देखिए कि हर बंदा अपने आमाल की खेती बो रहा है, यानी जैसे बीज डालते हैं ना, इसी तरह एक इंसान खेतियों में बीज डाल रहे हैं। अब वो बीज ऐसे नहीं है कि सुबह डाले और शाम को ठीक हो गए, उग गए और बड़ी बड़ी फसलें बन गई। अमल की खेती सुबह को डालें और शाम को नहीं कटती, इसके लिए कुछ वक्त दरकार होता है। कौमें अपने अरूज और जवाल की मंजिलें दिनों और महीनों में तय नहीं करती, बल्कि बाज़ औक़ात इसमें साल हा साल सदियों दरकार होती हैं। ऐसे वक्तों में जब कौमें नसीहत की ग़िज़ा नहीं लेती, तो अल्लाह ताला उनसे फिर नसीहत लेने की तौफीक छीन लेते हैं। कभी आपने किसी के दिल के अंधे को देखा हो? किसी दिल के अंधे को देखा हो? अल्लाह अकबर। एक रिवायत में आता है, इब्ने अबी हातिम ने किताबु तफक्कुर में मालिक बिन दीनार से नकल किया कि हक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोहे के जूते बनाओ और लोहे की असा हाथ में लो और अल्लाह की ज़मीन में इतने फिरो कि याखनी जूते घिस जाएं और आखनी असा टूट जाए। यानी खूब चलो, इधर चलो उधर चलो, मुराद क्या था कि इबरत के लिए दुनिया में घूमो फिरो, देखो तो सही कि तुम्हें वहाँ से क्या मिलता है, किस तरह मिलता है। कुछ लोग वर्ल्ड टूर से होके आ जाते हैं और सारी दुनिया के बुत जमा करके घर के शोकेसों में सजा देते हैं। म्यूजियम्स में से जाएंगे और बेकार चीज़ें लेके आ जाएंगे, बड़ी बड़े ऐसी इमारतों में से घूम के आएंगे, लेकिन नहीं लाते तो नसीहत की ग़िज़ा नहीं लाते। आज हमारे यहाँ तसव्वुर है इस चीज़ का कि चलो मोहनजोदड़ो में चलते हैं, वहाँ से नसीहत लेके आए। स्कूल्स के ट्रिप, कॉलेज के ट्रिप्स, यूनिवर्सिटीज़ के ट्रिप्स, खा पी के डेटिंग कर करा के हंस बोल के आ जाते हैं लोग। अल्लाह कहते हैं दिल अंधे होते हैं। मैं इन आयतों को पढ़ती हूँ तो मुझे अजीब सी कैफियत सामने आने लगती है मेरे अंदर। अल्लाह अकबर, बिल्कुल ऐसा शख्स आता है कि जो चल रहा है, देखने में मुकम्मल खूबसूरत नौजवान है, चेहरा भी अच्छा, आंखें भी अच्छी, लेकिन उसको नज़र नहीं आ रहा, उसका दिल अंधा है। फ़इन्ना हला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूब, है इलाज दिल की बीमारियों का। कहीं कोई आंखों का अंधा हो तो उसके लिए तो कई आई स्पेशलिस्ट होंगे देखने के लिए कि क्या इलाज हो सकता है कि नहीं। दिलों के अंधों का इलाज किस हॉस्पिटल में होता है, कौन डॉक्टर है इसका? कुरान वो हॉस्पिटल, वो किताब है जो दिल के अंधों का इलाज करती है, और जिसकी आंखें अंधी हुई उसको तो कोई उंगली पकड़ के चला देगा रास्ते पे, क्योंकि लोगों को दिख रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो दिल का अंधा होता है उसकी तो लोग उंगली भी नहीं पकड़ते, उसको तो ऐसी ख्वाहिशों में डाल देते हैं कि अब इसको छोड़ दो, इसके हाल पे ये ठीक नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वयस्ताजिलूना कबिल अजाब, और वो जल्दी मांगते हैं आपसे अजाब। वलें युखलिफल्लाहु वादहु, आप तसल्ली रखें क्योंकि अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। ये मक्का वालों की खड़मस्तियों की तरफ इशारा है कि जब इनकी बदकारियों पे अजाब नहीं आते थे तो कहते थे आते क्यों नहीं, बार बार डराते रहते हैं, होता तो कुछ भी नहीं, देखो मज़े से जी रहे हैं, देखो हमारे सूद के कारोबार और फैलते जा रहे हैं, हमारी हराम की गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, क्यों नहीं आ रही अल्लाह की पकड़ का? गम ना करो, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। आ इसलिए नहीं रहा कि वह इन नयोमिंदा रबी का कल फिस सनत मिम्मा ताउद्दून, बेशक एक दिन तेरे रब के हाँ 1,000 साल की तरह होता है जिस हिसाब से तुम गिनती करते हो। का पकड़े इसलिए नहीं आ रही कि अभी अल्लाह के हाँ 1,000 साल में तुम्हारा एक दिन पूरा होगा। किसी को 1,000 साल उम्र मिले तो कितने हुए, 10 सदियाँ जिएगा ना, 1,000 साल जिए, फिर उन 1,000 साल में खरमस्तियाँ करे तो फिर फरिश्ते अल्लाह को कहेंगे कि अल्लाह इन्होंने एक दिन खरमस्ती की है, फिर अल्लाह पकड़ेगा। कितना ज़बरदस्त अंदाज़ है कि जब लोग अल्लाह ताला की पकड़ से डरते हैं नहीं तो अल्लाह ताला उनको बताते हैं कि मेरे दिन बहुत लंबे हैं। वो कहते हैं ना कि जालिम की ढील बहुत होती है, अल्लाह मोहलत देता है, वही इशारा है। और ये एक दिन 1,000 के बराबर है, ये कैसे है? ये गैब का मामला है। इसके ऊपर बस हमारा ईमान यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला लोगों को फौरन नहीं पकड़ते, अल्लाह में तहम्मुल है, अस्सबूर है, अलहलीम है, उसको पता है 1,000 साल तक भी गलत काम करते रहेंगे अल्लाह ताला उनको बिलाखिर जब पकड़ेगा तो आएंगे ये मेरे ही पास। इनको अगर 1,000 साल की उम्र भी मिल जाए तो भी ये गलत काम करेंगे। तो लिहाजा अगर आप देखें कि किसी को एक दिन यानी 24 घंटे की मोहलत अल्लाह ताला दे तो 1,000 साल निस यौम की मोहलत दी ना, तो 500 साल 6 घंटे, जो तकरीबन 24 घंटे का चौथाई है, मोहलत दे दे तो तकरीबन 250 साल तक की मोहलत दरकार है। यानी समझिएगा बात को कि अल्लाह ताला किसी को अपनी नज़र में 1 घंटे की मोहलत देना तो वो हमारी इस दुनिया की तकरीबन 250 साल की मोहलत के बराबर हो जाता है। कई घंटों की, 40 साल की मोहलत मिल जाती है, यानी अल्लाह का 1 घंटा हमारे 40 साल के घंटों के बराबर होता है। तो इतनी जल्दी तो अल्लाह ताला पकड़ता भी नहीं है ना। इसकी मुख्तलिफ किस्म की तफसीर की गई, लेकिन इस आयत से जो एक बदतरीन किस्म का असूल अखज़ किया गया था वो दौरे अकबरी में किया गया था। आपने सुना होगा दीन इलाही का, पीछे भी बताया था आपको एक मौके पे। अकबर बादशाह खुदा अनपढ़ था, एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा हुआ था, दीन दुनिया का कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अपने इर्द गिर्द बहुत पढ़े लिखे लोगों को रखता था, इल्म के नाते से भी और दूसरी तरफ से। और ये वो दौर था कि जब मुसलमान उलमा के अंदर इस तरह की खबासतें आ चुकी थी कि तावीलात का दरवाज़ा खोल देते थे। इर्द गिर्द के जो दीनी हजरात थे उन्होंने इस आयत की तावील क्या की, ज़रा गौर से सुनिएगा, बात थोड़ी सी मुबहम है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो प्लानिंग करता है ना वो 1,000 साल की सिर्फ करता है, लिहाजा जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था ना वह 1,000 साल तक वैलिड रखा, अब ख़त्म हो गया, लिहाजा अब उसको करो पीछे, कंडेम करो, रिजेक्ट करो और एक नया दीन बनाओ जिसको दीन अकबरी का नाम दिया। उसकी तफसीलात आपको मैंने सूरह मायदा में सुनाई थी। शराब हलाल, खिंजीर हलाल, जिना हलाल, और क्या कबाख्तें थी वो। उसमें सजदा बादशाह को होता था। बादशाह अकबर इतना बड़ा हीरो था मेरी नज़रों में, जब ज्योग्राफी पढ़ते थे हम, जब हिस्ट्री पढ़ते थे। यकीन करें, मुगलिया दौर का पहला बादशाह बाबर था गालिबन, फिर अकबर आया। कितनों को पता है कि अकबर ने दीन को बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया। ये आयत पे आगे बात, कहीं मौका मिला तो आपको इसकी मज़ीद तफसीलात सुनाऊंगी। दुआ करें कि अल्लाह दीन के फितने से बचाए। वकाई ये मिन करियतिन अमलैतु लहा, और कितनी ही बस्तियाँ थी जिन्हें मैंने काफ़ी अरसा ढील दी। हालांकि वही या ज़ालिमतुन, वो ज़ालिम थी। सुम्मा खस्तुहा, फिर जब बाज ना आए तो मैंने फिर उनको पकड़ लिया। वह इलैयल मसीर, और आना तो मेरी तरफ है ना। कहाँ जाओगे, कितनी दूर जाओगे, आखिर तो पकड़ना तो मैंने ही है ना। देखिए, आप देखें बार बार इसमें अमलैतु, अखज़्तु, पकड़ का तस्कर है, आना मेरी तरफ है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कहाँ जाओगे, एक वक्त आएगा जब तुम मेरी तरफ आओगे, पता लग जाएगा तुमको। और ये जो मसीर लफ्ज़ है, ये ज़र्फ़ मकान भी है लौटने की जगह के मानों में, और मस्तर मीमी भी है लौटने के मानों में। तो यहाँ अल्लाह ताला ने उस बात को रखा। इंशाल्लाह यहाँ तक हम तिलावत सुन के तो फिर थोड़ी सी बात करके आगे चलेंगे।
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير